कीर्तन कीजिए। ऐसे ऐसे कीर्तन ब्रजवासी ही सुना सकते हैं, कितना सुंदर।
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, गोपाल भज मन श्री राधे, जय जय Thank you.
कोई कीर्तन कर सकता है या कर सकती है।
Yeah.
नष्ट ज्ञानं जनसलाप्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय यं प्राभ्यजन्तमन्तेतमपेतदैपायनो विरहकातर्याभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवान् त्वया विना इति विज्ञाय राधे पङ्गयमाम् मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम ओम विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की श्री चरण कमलों में कोटि कोटि सष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद शिष्णु भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन। तत्पश्चात दंडी स्वामीगण वैष्णव वैष्णवीगण और मेरे प्यारे बेटा और बेटी हम लोग आज पंचम दिवस कृष्ण कथा में आरंभ कर रहे हैं। मैंने अब तक ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त प्रेम पर भक्त तक बतलाया है और प्रेम पर भक्त वो पांडव हैं इसके भी कुछ कुछ मैंने व्याख्या की। सारा महाभारत ही इन लोगों की कीर्ति से भरा पड़ा है इसलिए जब किंचित थोड़ा सा इनका स्पर्श किया चले। अब हम आगे प्रेमातुर भक्तों का कुछ वर्णन करने जा रहा हूं। हमने बतलाया पांडवों का कुछ कुछ कृष्ण के साथ में ब्लड रिलेशन है, रक्त का संबंध है। जादुओं का क्या है, पूरा पूरी मधुपुरी में ही मथुरापुर में ही वसुदेव देवकी के घर से जन्म लिए और उसी समय में आधी रात को ही गोकुल में भी जन्म लिया। भागवत में स्पष्ट रूप से नहीं, कुछ परोक्ष रूप से कहा गया है नंद और यशोदा के पुत्र में के रूप में, किंतु यथार्थ में कृष्ण गोकुल में ही परिपूर्ण रूप से नंदनंदन के रूप में यशोदा नंदन के रूप में अवतरित हुए। तो वहां के बाद में कुछ दिनों के बाद में हाँ तो ये कहना चाहता था जादवों के साथ में उनका अधिक रक्त का संबंध। उनमें से उग्रसेन का नाम आप लोग जानते हैं, वही राजा थे कंस के पहले, किंतु कंस ने अपना राज्य चलाने के लिए उनको गद्दी से उतार कर जेल में बंद कर दिया और अत्याचार करने लगा। दुष्ट लोगों के संग में पड़कर और वो भक्तों पर अत्याचार करने लगा। तो उस समय में जब कृष्ण ने कंस को मारा वृंदावन से आकर, ब्रज से आकर, तो उस समय कृष्ण बलदेव जी अखाड़े में चारुण और मुष्टि के साथ में लड़ रहे थे और उसे पछाड़कर, उसे मारकर झट बहुत ऊंचे स्थान पर कंस बैठा था, जहां से वो आदेश दे रहा था कृष्ण बलदेव को कैद कर लो, मार डालो, नंद को, वसुदेव को भी कैद कर लो, उनको भी मारो, ऐसा आदेश दे रहा था। झट कृष्ण सिंह की तरह उछल करके वहां पर मंच पर गए और उसके सिर को के केस को पकड़ करके पृथ्वी में गिराया, उसके ऊपर में कूद गए, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यदि कृष्ण खिलवाड़ कर रहे हैं, यदि मर जाए तो वो क्या करेंगे, हमने कहा था कुछ है नहीं, उसे बात ही की बात हुई। मारे जाने के बाद में कृष्ण ने उसका सत्कार करवाया ध्रुव घाट पर और फिर स्नान करके जब आए तो राजगद्दी, आचार्य की पदवी, इसी मठ का अध्यक्ष, राजा, ये पद खाली नहीं रहना चाहिए, तुरंत भर देना चाहिए। इसलिए उग्रसेन ने बड़े बड़े विज्ञ ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलाया उग्रसेन जी ने, बुला करके कृष्ण का अभिषेक करना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने उन्हीं अभिषेक के वस्तुओं से उग्रसेन का राज तिलक कर दिया और बोले, मैं तुम्हारा दास हूं और बलदेव दास हैं, सारे विश्व के राजा लोग उपहार लेकर के आपके चरणों में देंगे, आप कोई चिंता ना करें, हम लोग इसकी रक्षा करेंगे। देखो उग्रसेन के दास बन गए और उनको सांत्वना दी। तो और यदुवंशियों की बात ही का, उनमें से हम कुछ इने गिने उदाहरणों को आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कृष्ण ब्रज से आए, कृष्ण और बलदेव गोपियों के, ब्रजवासियों के विरह में बड़े उन्मत्त थे, बड़े दुखी थे, वे अब विवाह नहीं करना चाहते थे, विवाह नहीं करना चाहते, वहां पर रहकर उनके पिता वसुदेव जी ने जल्दी से मथुरा के पास, मथुरा में और निकट में नहीं रखना चाहा, क्योंकि ब्रज है, ये ब्रज की तरफ में चला जाएगा, फिर आएगा नहीं। इधर बहुत दूर उज्जैनी में संदीपनी मुनि की यहां पर पढ़ने के लिए भेज दिया, वैष्णव के यहां नहीं, किसी शैव के यहां भेज दिया। तो वो 64 कलाओं में परिपूर्ण थे, उन्होंने उसको कृष्ण बलदेव को शिक्षा दी, सुदामा भी वहीं पर थे, वहां से फिर लौट और 18 वर्ष के करीब मथुरा में रहे, वृंदावन में 9-10 वर्ष की उम्र तक थे और यहां पर 18 वर्ष और रहे। क्यों? जरासंध प्रतिवर्ष लाखों सेनाओं के साथ में आक्रमण करता था, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए वहां से कहीं बाहर नहीं गए। इसके बाद में तुरंत सारी मथुरापुरी को और वहां के सब जदवंशियों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, पुरोहितों को एक रात में एक मिनट में द्वारकापुरी नई बसा करके वहां पर ले समुद्र के बीच में इस तरह से वहां पर गए। विवाह करने की तो इच्छा नहीं थी, किंतु एक दिन एक पत्र आया। कहां से पत्र आया? रुक्मी नगर से, कुंडीन नगर से। वहां पर कुंडीन नगर में रुक्मिणी के पिताजी रुक्मदेव जी रहते थे। उनका भाई, रुक्मिणी का भाई का नाम रुक्मी था। वो भी बड़ा भाई बलवान था। दैत्यों के साथ में, दानवों के साथ में उसकी मित्रता थी। शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, काल जमन, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, इन लोगों से उसकी बड़ी मित्रता थी। तो अपनी बहन की शादी वो करना चाहता था शिशुपाल से, और नारद जी ने बचपन से ही रुक्मिणी को कृष्ण की कथाएं सुनाया करते थे। उसने अपना हृदय मन कृष्ण को अर्पित कर दिया। रुक्मी के डर से, भाई के डर से पिताजी अब बूढ़े हो गए थे, बाध्य होकर के रुक्मी की बात माननी पड़ती थी। इसलिए उनको, शिशुपाल को और साथ साथ में उसके जो हमदर्दी वाले थे जरासंध, कालजवन, दुर्योधन, उनके साथ में भीष्म पितामह, कर्ण इत्यादि सब वहां पर उपस्थित हुए विवाह के। रुक्मिणी ने देखा जी तो जोड़ करके हमारी शादी देंगे। जिस दिन शादी होने को है उसके पहले दिन रात में अपने पुरोहित के बेटे को बुलाया और एक पत्र लिख करके उनके हाथ में दिया। मैंने अपना तन मन सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर रखा है। अब आप सिंह के समान हैं, मैं सिंह की हूं। कुत्ता उसको ग्रहण करना चाहता है। अब लज्जा तुम्हारे हाथ में है और मैं तुम्हारी हूं, और तुम लज्जा इत्यादि छोड़ करके दिखा। लज्जा अब किस बात का? लज्जा होनी चाहिए स्त्रियों को, किंतु लज्जा भी छोड़ दिया और दिखा। मैं कल तक देखूंगी, कल ही शादी होने वाली है, आज सवेरे तक देखूंगी। और सवेरे आप पहुंच करके मुझको ग्रहण करके नहीं ले गए तो मेरे शरीर को कोई नहीं देखेगा, मैं आत्महत्या करूं। वो ब्राह्मण रात में कृष्ण के पास में पहुंचा, कृष्ण के हाथ में पत्र दिया। कृष्ण ने उससे देखा और किसी से कुछ नहीं दिया। उसी समय सभा से उठ गए, रात में ही 10-11 बजे, और अकेले रथ पर सवार होकर के ब्राह्मण को भी बैठा लिया और चल पड़े। और बलदेव जी कुछ समझ गए, उनकी मन को भी जानते हैं। बस बलदेव जी चतुरंगणी सेना लेकर के उनके पीछे पीछे वहां पर पहुंचे, कुंडी नगर में गए। और सवेरे होते 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 8-9 बजे तक कुंडलपुरी में पहुंच गए। राजा को पता लगा जी कृष्ण आ रहे हैं, आ गए हैं। तो उन्होंने कहीं बाहर में ही उनके लिए स्थान दिया, और यह बात क्षण भर में चारों तरफ आग के तरफ में फैल गई, ये कृष्ण आ गया है। और इन लोगों को बड़ी चिंता हुई, उन लोगों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, करोड़ों करोड़ों सेनाएं लेकर के, जिससे कृष्ण रुक्मिणी के पास न जा सके। और इधर रुक्मिणी देवी की पूजा करने के बहाने ग्राम से बाहर देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए आए। जब ही पूजा कर रहे थे उसी समय में कृष्ण रथ लेकर के वो श्याम के जैसे चील या गिद्ध हो उसी के भांति गरुड़ की भांति एकदम तीर की भांति भीतर प्रवेश करके कोई उनको रोक नहीं सका और रुक्मिणी को पकड़ करके रथ में बैठा दिया और घोड़ों की लगाम रुक्मिणी को दे दिया। वो रथ चलाने लगी और कृष्ण अपना धनुष बाण और अस्त्र शस्त्र लेकर के सेनाओं को रोकने लगे, उनको परास्त किया। इतने में बलदेव प्रभु आ गए और सबको परास्त करके फतेह दिया। भीष्म पितामह इत्यादि सब हैं, सबको परास्त करके कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के चले आए और रुक्मिणी को तो मार ही डालते, किंतु रुक्मिणी के लिए बलदेव प्रभु के कहने से उसे छोड़ दिया और ले आकर के शादी कहां पर द्वारका में शादी। कृष्ण की इच्छा नहीं थी किंतु क्षत्रियों की आन पर आंच न आने पाए और उसने ऐसा पत्र लिखा कि मैं मर जाऊंगी आपके बिना आप यदि नहीं आए। इसलिए शादी करने की इच्छा तो नहीं थी किंतु शादी कर लिया। ये बाई चांस ही को रुक्मिणी जी कैसी थी, बड़ी सुंदरी। ब्रज में दो सुंदरियां हैं, एक रात चंद्रावली। कौन चंद्रावली है? वृषभानु महाराज जी के भाई की लड़की है, भाई की बहुत सुंदर और बड़ी धीर स्वभाव की है। और राधा जी विश्वभानु महाराज की लड़की, ये कुछ धीर समय के भाव की नहीं, बांध भाव की है, बांध भाव की है, झट रूठ जाती है। तो चंद्रावली के स्वभाव की रुक्मिणी थी, बड़ी धीर गंभीर और समस्त रानियों में श्रेष्ठ थी। सत्यभामा चढ़ चंचल स्वभाव की, वो राधा जी के स्वभाव की थी, इसलिए कृष्ण को बहुत पसंद थी। वैसे ही यहां पर सत्यभामा रुक्मिणी रानी है, सर्वश्रेष्ठ पाठ रानी है, किंतु अधिकतर सत्यभामा के स्वभाव से परिचित होकर के उसको आदर देते हैं। मैं तुम्हारे ही हूं। एक दिन की बात है, कृष्ण सब रानियों के साथ में बैठे हुए थे अपने महल में और सबसे बातें कर रहे हैं। कोई चमक डुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतने में कहीं से नारद ऋषि वीणा बजाते हुए आए और उनके हाथों में एक पारिजात का पुष्प देवलोक से नंदन कानन से ले आए थे। जो उसको धारण करेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ी नहीं होगी और वो बड़ी सुंदरी रहेगी, सब समय प्रफुल्ल रहेगा, फूल में इतना भी
फूल मुरझाएगा नहीं कभी,
और वो फूल कभी नहीं मुरझाएगा और स्त्री भी कभी नहीं मुरझाएगा। तो नारद जी आते ही कृष्ण के हाथों में वो फूल दे दिए। कृष्ण देखकर के बड़े प्रसन्न हुए, सुगंध से सब जगह भर गया। कहा जी मैंने आपको रखने के लिए नहीं दिया है, मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप ये 16108 रानियां हैं उनमें आपकी सबसे बड़ी परम प्रिय प्रियतमा कौन है उसको याद दीजिए। कृष्ण बगल झांकने लगे, ये जहां जाता है ये झगड़ा लगाता है, अब झगड़ा लगा। कहीं आप देर नहीं, मुझको जाना है,
बहुत काम है,
बहुत काम है, मैं ठाक नहीं, हमारे सामने ही नहीं जल्दी से ये दीजिए अभी। कभी रुक्मिणी की तरफ हम देखते हैं सत्यभामा के, और सबसे ये कारण है चुपचाप गोपन रूप में कि मैं तुमको सबसे अधिक प्यार करता हूं।
सबसे, एक भी ऐसी कोई नहीं है जिसे नहीं, सबसे कहते मैं तुमको सबसे अधिक प्यार, और उसके पास जाते हैं तो उससे कहते हैं। किंतु आज उनकी चतुराई कुछ गड़बड़ी होने वाली है, इसलिए सोचने लगा नहीं नहीं प्रभु जल्दी से कीजिए, हमको बहुत जल्दी। तो कृष्ण क्या करते, देख सुन करके सभी रानियां बैठी हुई और रुक्मिणी के हाथों, रुक्मिणी के हाथों में देते ही सत्यभामा एकदम कोप किया और पैर से पृथ्वी को मारती हुई, दम दमाती हुई, क्रोध के आवेश में मुख लाल हो गए। इतना झूठा लबा हमसे कितना करता है, और आज हमारे सामने सबके सामने में ही हमको अपमानित करके रुक्मिणी को दिया, उस सभा छोड़ छोड़ करके चली गई कोप भवन में, और वहां अपने सारे वस्त्रों को उतार करके मैले कपड़े चिथड़े पहन। कृष्ण को पता लगा ये तो कोप भवन में गई है, मानेगी नहीं साजी। पास में पहुंचे, उसके पीछे बैठे, वो तो सो रही, और जैसे ही हाथ दिया मनाने के तो मैं विषधर सांप की तरफ में कांप उठी और उसके हाथ को फेंक दिया। मनाने में बड़े पटु हैं ना, अभ्यास उनको है, ब्रज की गोपियों को मनाने के लिए उनका बड़ा अभ्यास है। आज उनको एक अवसर मिला यहाँ पर भी ब्रज में भी सत्यभामा, फिर बोले देखो तुम बड़ी रुष्ट हो गए। अरे तुम एक पारिजात की बात कर रही, मैं देवलोक से अभी तुमको लेकर पारिजात के पेड़ को तुम्हारे घर में लगा दूंगा। इतनी सी छोटी सी बात के लिए धीरे धीरे उसको प्रसन्न कर। अच्छा गरुड़ अभी आ जाओ, गरुड़ आ गया, बस रुक्मिणी उनको सत्यभामा को उसको बैठाया उसी क्षण में, और बैठा करके अपने बैठे, और उस समय में नरकासुर था उसको मार करके, और फिर देवलोक इंद्र से मांगा जी पर्याप्त पुष्प पर्याप्त का एक पे मुझे छोटा सा पौधा चाहिए, वहां पर तो नंदन कानन में भरे पड़े हैं। इंद्र ने कहा जैसे तुम क्या समझते हो कि ये पृथ्वीलोक में जाएगा, तुम्हारे लिए है मनुष्यों के लिए नहीं है, मैं इसे नहीं दे सकता। कृष्ण ने जबरदस्ती पौधे उखाड़ लिए और युद्ध हुआ, उस समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी वो भी पहुंचे और देवताओं को परास्त करके और हरा कर पारिजात पुष्प को लेकर के आए और सत्यभामा के घर में उतरे। सत्यभामा से कहा गया सब रानियों को निमंत्रण करो, सब रानियों को निमंत्रण किया, उसमें रुक्मिणी को भी, देखो रुक्मिणी कितनी गंभीर है, आई बैठी उस समय में महोत्सव में वो शामिल हुई, और उनके सामने कृष्ण ने पौधा उसके घर में लगाया उसको मनाया। तो रुक्मिणी जी को कैसा लग रहा होगा सोचो तो तुम लोग अपने विचार से, ऐसा लग रहा है, किंतु धीर गंभीर है। इसलिए वो कुछ मान नहीं किया और फिर उत्सव समाप्त हुआ। एक दिन रुक्मिणी जी अपने राजभवन में बैठे थे, कृष्ण को वो हाथ से चमट उला गई और उनकी जो दासियां थी वो सब प्रकार से सेवा कर रही थी। उस समय कृष्ण उनके पलंग पर बैठे हुए जरा गंभीर हो गए, बोले जे रुक्मिणी मैं तुमसे एक बात आज कह रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए योग्य नहीं योग्य पात्र नहीं। तुम बड़े महाराज की लड़की और मैं एक साधारण व्यक्ति का लड़का हूं। मेरे वंश में कोई राजा नहीं हो सकता, वो कुछ अभिशम बात है। मैं एक साधारण जमींदार का बेटा हूं। तुम परम सुंदरी हो, विश्व में ऐसा कोई नहीं जो तुमको नहीं चाहे। और मैं काला कालूठा भीतर बाहर हूं, मैं निर्गुण हूं। केवल दीन दुखी लोग ही हमको चाहते हैं, और तुमको देवता से लेकर के मनुष्य तक सभी राजा राजन्य वर्ग बड़े बड़े गुणी तुमको चाहते हैं। उस सभा में उस समय आए थे लोग तुमसे विवाह कर, तो मैं निर्गुण हूं। केवल दरिद्र लोग दुखी लोग हमारा आश्रय लेते हैं, दूसरा नहीं, वही लोग हमें पुकारते हैं। और तुमको सारे विश्व के लोग चाहे, देवता तक तुम्हें चाहे। मैंने केवल क्षत्रिय धर्म की आन रखने के लिए मैं तुम्हें हरण कर दूंगा, किंतु मैं समझता हूं कि मैंने ये बहुत ही बुरा कर्म किया, तुम्हें नहीं लाना चाहिए। मैं विचार करके दे रहा, मैं किसी प्रकार से तुम्हारे योग्य पात्र नहीं। अच्छा, अब तुम बताओ कि हमको छोड़ करके किस राजा को, राजकुमार को, देवता को चाहती हो, मैं उसे देऊंगा। तुम वहां सुख से रहो। बस इतना सुनते ही क्या हुआ, हाथ से चमक गिर गया और एकदम गिर गया, मूर्छित हो गए, श्वास चलना बंद हो गया। कृष्ण ने देखा तो मैंने तो गोपियों से कितनी छिठोली करता था, वो ऐसी दशा नहीं होती थी, हमारी थोड़ी भी छठोली नहीं समझ सकी, मजाक उतर करके पलंग से और कान के पास में जाकर के बोले जोर से, रुक्मिणी तुम हमारी सबसे अधिक प्रिया हो। मैंने तो छठोली है की थी, मैंने समझा कि तुम ब्रज की गोपियों की भांति होगी। वो ठठोली करती थी तो वो तो हमसे कहती थी, तुम हमारे दरवाजे पर मत आना, हमारे कुंज पर मत आना, तुम भीतर बाहर काला है, और हमको वहां से भगा देती थी। तो तुम इतना भी नहीं समझते, मैं जानता तो तुमसे ये दिल लगी नहीं करता, भविष्य में मैं प्रतिज्ञा करता हूं ऐसी दिल लगी नहीं करता। उठो, नहीं तो तुम मरेगी तो हम भी मरेंगे। धीरे धीरे ये सुन करके रुक्मिणी पान का संचार हुआ, किसी प्रकार से उठ करके बोली, आप ठीक ही कह रहे हैं, आप हमारे योग्य पात्र नहीं हैं। तो इसका मतलब मैं आपके योग्य पात्र नहीं हूं, आप विश्व ब्रह्मांड के सृष्टाओं के ईश्वर के भी ईश्वर परमेश्वर नहीं हैं, भला आपके योग्य कैसे हो सकते। आप निर्गुण में अप्राकृत समस्त गुणों के भंडार हैं, हमको संसारी देह में आसक्त राजा और राजकुमार हमें चाहते हैं, और आपको जगत से मुक्त होने वाले जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि और आपके शुद्ध परिकर जो हैं वो गोपियां, ये सब आपके चाहते हैं। नंद बाबा के यशोदा आपको प्यार कर, दूसरा आपको तो जान ही नहीं समझ सकते। इस तरह से और से बातें सब कहने लगी। अब फिर दोनों में थोड़ा सा ये प्रेम कलह करने के बाद में फिर सुलहनामा होने पर वो प्रेम और बढ़ गया। ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं कहां होती थी, द्वारका। कितनी ये श्रेष्ठ मशी, वैकुंठात किशोदरा द्वारावती जागिया, जब शी शत नंद पट्ट महिष बिंदे प्रभु खेलती, प्रेम क्षेत्र में अपि असौ ततो श्रेष्ठा मथुरा हरे जन्मता जत्र श्री ब्रजेव राजतरम तामेव नित्यम। ये तो हमने द्वारकापुरी की बात, थोड़ा मथुरापुरी के भक्तों को भी तो सुनो। हाँ, कृष्णदास जी एक कीर्तन सुना लिए,
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी नाथ की जय। जय जय श्री राम। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा के, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा के, रसी रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा के, रसी सब भक्ति बड़े प्रेम से भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा के, अनुपम माधुरी जो हमारे श्याम श्यामा के, अनुपम रसी रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा के, रसी अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के,
अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे
द्वारका से मथुरा में और वहां की कथाएं सुनी। मथुरा जरा वृंदावन के निकट है, ब्रज के निकट है, आवागमन रहता है। कृष्ण का जन्म भी यहां हुआ, इसलिए द्वारकापुरी से श्रेष्ठ है। यद्यपि द्वारकापुरी पीछे उजड़ करके वहां चली गई, किंतु फिर भी जब तक कृष्ण ब्रज में थे सब समय वसुदेव जी खबर दिया करते थे, आते जाते। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, निवृत्त तरसई रूपगी यमाना औषधा श्रोत्र मनोभिरामा कह उत्तम श्लोक गुणानुवादा विरज्ञे बिना पशु। कृष्ण की कथाएं ऐसी रसीली और तत्वपूर्ण कथाएं यदि किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से निकले जो संसार से सब प्रकार से निवृत्त मुक्त है, रसिक है, अनुभवशील है, तो उसके मुख से जो हरि कथा निकलती है कृष्ण की, वो भव सागर से पार जाने के लिए जो भाव रोग है उसके लिए अचूक औषधि है, राम बाण है। जो सुनेगा वो जरूरी भाव सागर को पार करेगा। भाव रोग माने क्या? सभी भाव रोग से अभी रोगी है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे गमनम, माता के घर में जन्म फिर मृत्यु और फिर माता के कर्म में, 84 लाख योनियों में उकर उकर देवता दानव मनुष्य ऐसे बोलते उसे निकलते नहीं, यही भावरूप है। इसके लिए अचूक रामबाण औषधि भगवान की लीला कथाएं हैं, सबके मुख से नहीं। जो पैसा कलेक्शन करने के लिए आते हैं उनके मुख से नहीं, पैसे पर नजर रखती है उसके लिए नहीं, उनको पैसा मिल गया बस खत्म उसका। सुखदेव गोस्वामी और उनकी धारा में रहने वाले इनके लोभ से रहित होकर के जो हरि कथा सुनाते हैं वो भावरों की अवचित। तो जो जो लोग भगवान की इन सुंदर मधुर प्रभावशाली कथाओं को नहीं सुन पाते, नहीं सुनते हैं, वो आत्मघाती, अपनी हत्या करने वाले, दूसरों की हत्या करने वाले। ये हत्या यथार्थता नहीं है, ये तो हो गई थी जन्म हो गया, और वो कथा कैसी है उसको यदि निरादर किया कोई नहीं सुना तो जन्म जन्म नरक में जाए, तो आत्मघाती है, आत्महत्या है। और भी कहा है, मनुष्य रूपी ये शरीर सुदृढ़ नौका है, भव सागर में नौका चल रही है और गुरु उसके खेवाने वाले कर्णधार हैं, उस पर पाल टना हुआ है। पाल समझते हैं ना, कपड़े का होता है, उसमें हवा भर जाने से उधर में नाव सकती है, खेने की जरूरत है। वो भगवान की कृपा है अनुकूल, जो साधु संग दे देते हैं ये साधु संग, और इसको भी पा करके जो मनुष्य भव सागर से तर नहीं गया वो आत्मघाती है, उसके समान और आत्मघाती है। इसलिए बड़े प्रेम से इन कथाओं को सुनो और फिर इस संसार में माता के कोख में फिर से जन्म लान लेना पड़े, बड़ा दुखदायी है, जन्मते भी मरते भी कितने प्रॉब्लम से हैं और न जाने कहां जाना है। अब यहां पर आइए मथुरा में रंगशाला में, कंस दुर्बुद्धि ब्रज में पुतना को भेजा,
अगासुर बकासुर को भेजा, केशी दैत्य को भेजा, ब्रह्मासुर को भेजा, किंतु खबर देने वाले वहां से नहीं आए कि उनका क्या हुआ, लौटे नहीं। उसने विचार किया जे कृष्ण को उसके भाई के साथ में छल बल कौशल से किसी प्रकार से यहां बुलाऊं मथुरा में, मथुरा में बुला करके हम सभी लोग रहेंगे, हमारे बड़े बड़े पहलवान रहेंगे, कुबल्यापीर हाथी रहेगी और बड़े बड़े हमारे भाई लोग हैं, बड़े बड़े पहलवान, सभी मिलकर के इसका वध करेंगे, अकेले नहीं होगा। ब्रज में नहीं जाता था, वृंदावन में, गोकुल में नहीं जाता, डरता था। क्यों डरता था? एक समय वो ब्रज गया पुतना के वध के बाद, उसका एक बगीचा था जमुना के किनारे गोकुल के आसपास में बहुत, तो एक बार वहां से निकल करके जब वहां गया तो मारने के नियत से गया। वहां एक बूढ़ी थी, जब प्रवेश करते ही एक बूढ़ी मिली, सफेद केश और दाढ़ी इत्यादि सब, सफेद केश और बूढ़ी बड़ी थी गंभीर। बोले तुम कहां जाएगा, कहां आएगा, कहां जा रहे हो? मैं इधर ही जा रहा हूं। जाएगा? अच्छा ठीक। उसको पकड़ करके डुबो दिया किसी सरोवर में, तो ये बूढ़ी बन गया। डोकरी, डोकरी जानती हो? डोकरी माने अत्यंत बूढ़ी, लठिया लेकर के ऐसे ऐसे हिल करके चलती है डोकरी में, और उसको वहां पर बैठा दिया गया जैसे गोबर पाल, गोबर होता है ना गाय का बैल सब का, और उसके कंडे बनाओ। वो कंडा बनाने लगा, कितने दिन तक कंडा बनाता रहा, और बूढ़ी चली गई। अब तो ये बड़ा रोने लगा, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। फिर वो बूढ़ी आई, अब नहीं आएगा तो नहीं, कान पकड़ो, कान पकड़ा तो फिर अच्छा तो जाओ। फिर उसको मंत्र से उसको डुबो दिया और फिर वो कंस बनकर के वहीं से भागा, फिर आकर के मारा, इसलिए वहां नहीं जाता था। अब उन्होंने अक्रूर को भेजा, अक्रूर मिले नंदगांव में, नंदगांव में चरण पहाड़ी है, कृष्ण के चरण चिन्हों को देख करके वहां पर लौट गए, प्रेम से गदगद हो गए, स्तव स्तुति करने लगे। जब मैं जाऊंगा तो चिन्हेगा कि पहचानेगा कि नहीं, मैं उसका चाचा हूं ऐसा कहेगा। एकदम आंखों से आंसू गिरने लगे, रोमांच कम होने लगा। जब पहुंचे तो सचमुच में कृष्ण ने उनको, अरे चाचा जी आप कैसे हैं? बलदेव जी भी आकर के प्रणाम, ये चाचा जी कैसे हैं? घर में गए, नंद बाबा ने आदर किया और बातचीत होती रही। अंत में निर्जन स्थान में कृष्ण और बलदेव को पा करके उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा जन्म यहां नहीं है, तुम्हारे माता पिता वसुदेव देवकी हैं, और उनको कंस कितने दिनों से उनके सामने उनके लड़कों को मारता है, तुम्हारे लिए अष्टम कर्म में लड़का जन्म होगा वही मारेगा कंस को, इसलिए वो मारता है, बड़ा निष्ठुर है। उनके छाती पर पत्थर रख करके और उन्हें गाली गलौज करता है, रोज अपमान करता है और मारता है, बस तुम्हारे लिए वो जीवित हैं और तुम्हारे लिए ही ऐसा हो रहा है। दोनों को बड़ा रोष हुआ, हमारे माता पिता हो और न हो कोई बात नहीं है, किंतु समझते हैं, और हमारे बाबा के बड़े मित्र हैं नंद बाबा के, मैं जरूर चलूंगा और उनको उससे छुटकारा दूंगा। नंद बाबा को आदेश हुआ, जो कल सवेरे कृष्ण सखाओं के साथ में और मैं भी उनके साथ में जाऊंगा। वहां पर कंस ने बुलाया है, वहां पर एक बहुत बड़ा भारी महोत्सव हो रहा है, शंकर जी की का उत्सव होगा, उसमें धनुष यज्ञ इत्यादि होगी, तो दिखने के लिए बुलाया है अखरूट आगे ले जाने की, अतएव चलना है। तो गोप लोग भी, कृष्ण के सखा भी, और ये लोग तैयार, किंतु तो गोपियों का किया हुआ इसका वर्णन पीछे करें, फिर हमें एकदम मग्न हो गए, पछाड़ खा करके गिर पड़े। जसोदा जी को अकल नहीं है, जाएगा तो वहां से आने देंगे वो लोग, जहां जाता है उसको वहां से फिर कोई आने नहीं देता। रथ के आगे खड़ी हो गई, गिर गई। कृष्ण ने किसी प्रकार से उतर करके समझाया और फिर अपूर्व के साथ में टेढ़े मेढ़े रास्ते से रथ पर चढ़ करके वहां चले। अंधा भी कृष्ण को देखने के लिए, जब कृष्ण बलदेव के साथ में सखाओं के साथ में जरा पुरी का दर्शन करने के लिए, रंगशाला का दर्शन करने के लिए शाम को जब जा रहे थे, तो अंधा भी कहता था कि चलो हम लोग कृष्ण को दर्शन करें। जरूरतें पर बैठी हुई वहां की महिलाएं कृष्ण को देख रही, एक श्रृंगार कर रही है दूसरी का, आंख में एक अंजन दिया है, दूसरे में बाकी। कृष्ण कहीं चली नहीं, कहते सखी अब छोड़ दो, तो कृष्ण चला जाएगा, दर्शन नहीं होगा। सभी बड़ी उत्सुकता से कृष्ण को दर्शन करने के लिए अटारियों पर चढ़कर के इधर चढ़कर के देख रहे। कृष्ण गए लौटे दूसरे दिन, कुबल्यापिर को जो रास्ते में था उसको मार, उसके दांत को निकाल लिए, उसी से उसके पीट करके मारा, रक्त के बूंद यहां पर जैसे सिंहों को लगते हैं वो लग गया, और उन्हीं दांतों को यहां पर रखकर कृष्ण बलदेव वीर की भांति बढ़े, अखाड़ा में पहुंचे। उस समय में चारों मुष्टिक ने इनको पकड़ करके अखाड़े में ले आए। आज महाराज को खुश करना है, हम लोग कुश्ती करके दंगल करके दिख रहे हैं। कृष्ण ने, बलदेव जी ने कहा, हम लोग छोटे अभी दूधमुखे बच्चे हैं, 8-8, 9-9 वर्ष की अभी उम्र है, तुम लोग बड़े बड़े पहलवान हो, पहाड़ के समान बराबरी के साथ में हम लोग लड़े, अरे बराबर, तुम लोग जंगल में रहने वाले पूतना और कितने को मारने वाले हो, पकड़ करके खींच लिया। जबकि कुश्ती होने लगी, जबकि प्राण से मारने के लिए आघात करने लगे, उससे कृष्ण को, बलदेव को वीर रस का आस्वादन। किंतु उस समय नगर की जो जादुओं की पत्नियां थी वो कहने लगी, इस धर्म सभा में अधर्म प्रवेश किया, यहां पर किसी सभ्य आदमी को रहने की आवश्यकता नहीं, सबको अधर्म लगेगा, दूध मुखे बच्चे और पहाड़ जैसे ये, और जान मारने की इच्छा से ये उसको मार रहे हैं, और कृष्ण को देखो और ये सब अभी अबोध बच्चे जैसे हैं, इनको कैसे मार रहे हैं, यहां पर किसी को ठानना नहीं चाहिए, नेता धर्म लेगा। और उस समय कृष्ण का ऐसा रूप जो जैसा था वैसा ही देखा, कंस ने तो साक्षात मृत्यु समझा, और दूसरे राजा लोग थे उन्होंने देखा जैसे ये तो महा बलवान, योगियों ने परम पुरुष के रूप में देखा, नंद और वसुदेव इत्यादि ने पुत्र की भांति देखा, सखाओं ने सखा के रूप में देखा, जो जैसा था उसी तरह से 12 रसों में कृष्ण का अनुभव
किया।
मल्ल लोगों ने वज्र के समान देखा, सभी लोग डर गए। तो उस समय ये क्या कहती हैं, कृष्ण के प्रति कितना अनुराग है मथुरा वासियों का, ये हम दिखला रहे, द्वारका वालों से भी अधिक। पुण्यावत प्रतिभो जगाय निलिंग, बूढ़ा पुराण पुरुष परिचित्र माल्य गा पालयन सहबला प्रणयन चेणु विक्रिया गरीब रमा। ये ब्रज ही धन्य है और ये ब्रज में और गोप और गोपियां ही ये धन्य हैं। जहां ये विश्व ब्रह्मांड के सृष्टाओं के ईश्वर के भी परमेश्वर साक्षात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण यहां पर साधारण रूप में विराजमान हो रहे हैं, गायों को पालन कर रहे हैं, चराते हैं, सखाओं के साथ में खेलते हैं, बलदेव जी के साथ में बेड़ू के जा रहे हैं और बिकड़ी आंचती वृंदावन के बनपन में गौओं को चराते हैं और जिनके चरणों की धूली की वंदना और पूजा शंकर और स्वयं लक्ष्मी जी करते हैं। वो ये ब्रजवासी कितने धन्य हैं। गोपस तपा और गोपियों ने कौन सी ऐसी तपस्या की कि लावण्य और रूप की राशि जो पृथ्वी में कहीं नहीं है। बोलो वृंदावन में भी कृष्ण के समान रूप किसी का नहीं है। नारायण की लक्ष्मी तो नारायण को छोड़कर के कृष्ण का भजन करने के लिए बेल मन में चली गई और दृष्टि ये गोप और गोपियां अपने नैनों से कृष्ण के उस लावण्य राशि का पान करती हैं, दूसरे के लिए सब। ये गोपियां कितनी सौभाग्यवान हैं। जातो हने महनने मथनो पलेप रेखें खना उदितो खन मार्जनादो गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो यस्तु कंठो धन्ना प्रजस्य गुरु क्रम चित्त जान। गोपियां कैसे धन्य है। जादो हने गाय धोती और करती क्या है। गोविंद राम धर्माधवे की गोविंद राम धान्य और गम जौ इत्यादि को कूटती हैं, कूटती हैं इधर और करती क्या है। और गोपियां अपने पुत्र की बाल्य लीलाओं का स्मरण करते हुए दधि मंथन कर रही हैं और साथ साथ में आंख बंद करके आंसुओं से नेत्र से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। गोविंद युद्ध भूमि में जबकि उनको मारने के लिए ये लोग चेष्टा कर रहे हैं क्रोध से तमतमा रहे हैं कृष्ण, ऐसी दशा। और गोपियों का सौभाग्य क्या, चलते फिरते उठते बैठते सब समय कृष्ण के नेत्रों में रहे। ऐसे गोपियों का कैसा सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य होता है, ऐसा कृष्ण के प्रति उनका अनुराग है। तो ये मथुरा वालों का कितना कृष्ण के प्रति, विशेष करके इंद्रमणियों का अनुराग है। और जिनके लिए ये प्रशंसा कर रही हैं, वो ब्रज की गोपियां कैसी होंगी, धारणा के अतीत होगा। अब कल उसकी हम व्याख्या करेंगे, आज यही तक बता सकते हैं। गौ प्रेमा
जय जय श्री राधे।
हरे कृष्ण। कुछ भक्तों लोगों ने परिणाम दीक्षा के लिए अनुरोध किया है, कल सुबह 9 बजे कांतिलाल गुरु के घर पर दीक्षा समारोह होगा। जो लोग दीक्षा के लिए अनुरोध किया है उन लोगों से अनुरोध करता हूँ, 8:45 तक कांति पुंज कांति भाई पुंज के घर पर उपस्थित हो जाए। हरे कृष्ण।
श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा।